ओम शांति। हम सभी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनका ब्राह्मण जीवन, अलौकिक जीवन स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने ब्रह्मा के मुख कमल से दिया है। ये अलौकिक जीवन हम सभी के लिए एक बहुत सुंदर सौगात मिली हुई है। जब कोई सौगात किसी विशेष आत्मा द्वारा मिलती है तो उसका बहुत ही महत्व होता है। हमने भी स्वयं भाग्य विधाता द्वारा ये सौगात प्राप्त की है। वैसे तो मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन कहा गया है, लेकिन दुनियावी जीवन में तो जैसे जी रहे थे वो जी रहे थे, लेकिन हम उन कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई ऐसी भाग्यशाली विशेष आत्माएं हैं जिन्होंने डायरेक्ट भगवान द्वारा जन्म प्राप्त किया है। तो सबसे श्रेष्ठ भाग्य किसका हुआ है? तो कौन कहेगा, नशे से क्या कहेंगे, हमारा आप सब कहेंगे ना, हमारा, या मैं कह रही हूँ हमारा, सबका है ना। तो जब कोई विशेष गिफ्ट किसी को मिलती है उसे बहुत सुंदर ढंग से संभाल करके रखा जाता है, और अगर उसमें कुछ बढ़ोतरी की जाती है तो और भी सुंदर हो जाता है। हम सभी के लिए ये जीवन जो मिला, ये सुंदर सौगात, और जीवन के साथ साथ जो समय मिला है ये उससे भी सुंदर सौगात है। और वो समय कौन सा है? संगम युग का। सारे कल्प में सबसे श्रेष्ठ युग संगम युग है। और ये संगम युग क्यों श्रेष्ठ युग है? क्योंकि इस युग में ही हम अपने भाग्य को, अपने जीवन को जैसा भी बनाना चाहें, जितना ऊंचा बनाना चाहें उतना ऊंचा हम इसको बना सकते हैं। लेकिन बनाने का आधार क्या है? बनाने का आधार है अमृत बेला। तो वैसे तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और कलयुग की भी अभी कौन सी बेला चल रही है? अंतिम बेला चल रही है। और अभी जो संगम युग का समय है ये कौन सा समय है? ये अमृत बेले का ही समय है। तो संगम युग सारा ही हम ब्राह्मण बच्चों के लिए अमृत बेला है। उस अमृत बेले में भी प्रतिदिन के हिसाब से जो बेला अमृत बेले आती है वो सबसे महत्वपूर्ण बेला है। लेकिन उसके महत्व को जानना, समझना और उस पर चलना, जानते तो आप सभी हैं, मानते भी आप सभी हैं, अब रह जाती है बात चलने की। क्योंकि भक्ति मार्ग में भी हमने देखा है कि अमृत बेले का विशेष महत्व है। भक्त आत्माएं, साधु संत आत्माएं सवेरे सवेरे उठ करके विशेष रूप से क्या करती हैं? अमृत वेले ही भगवान का भजन, सिमरण, गायन, पूजन करती हैं, क्योंकि समझती हैं कि ये जो समय है ये विशेष समय है, भगवान से वरदान लेने का समय है। क्योंकि रात्रि का जो समय है, हम सभी बाबा के बच्चे तो खास जानते ही हैं, दुनिया भी समझती है कि रात्रि का 12 बजे तक का समय का उस समय का वातावरण शुद्ध नहीं होता, इसलिए भक्त आत्माएं भी सुबह सुबह ही भगवान को याद करती हैं। और हम बच्चों को भी बाबा ने सुबह 3 बजे से लेकर के, बल्कि बाबा ने तो कहा है कि 12:01 शुरू होते ही अमृत बेला शुरू हो जाता है, लेकिन हम खास जो योगी आत्माएं हैं, तपस्वी आत्माएं हैं, उनके लिए 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का जो समय है वो विशेष समय है। क्योंकि 2 बजे उठ करके हम बाबा से जितना जैसा जिस प्रकार का भी वरदान लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि अमृत वेले 2 बजे उठ करके फिर सारा दिन की जो दिनचर्या है वो सेट नहीं होती, तो बाबा ने हम सबको कितना सहज करके दे दिया कि बच्चे कोई बात नहीं, 2 बजे नहीं तो 3 बजे, नहीं तो 3:30 बजे, चलो 3:30 बजे उठ जाएं, नहीं 3:30 तो 4 बजे तो उठना ही है। क्योंकि ये समय खास बाबा ने अपने ब्राह्मण बच्चों के लिए रखा है। इस समय भगवान स्वयं हर बच्चे के पास चक्कर लगाने के लिए जाता है। मधुबन में तो है ही है, सेंटरों पर भी जाता है, और आप ऐसा न समझें कि आपके पास घरों में नहीं जाता है, आपके पास भी सुबह सुबह बाबा जगाने के लिए जाता है। अनुभव तो सभी ने किया होगा ना, किया है ना सभी ने अनुभव, कि सुबह सुबह 3:30 से 4 के बीच में एक बार खटिया हिलती जरूर है, चाहे वो खटिया हिले, चाहे खटखट हो, चाहे कोई दूसरा कोई साधन बने, अलार्म बजे ना बजे, लेकिन एक बार आंख हमारी अवश्य खुलती है। और उस समय जब आंख खुलती है, आंख खुलते ही यदि हम अलर्ट होकर के बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं, तो बाबा हमारे ऊपर डायमंड की बरसात करना शुरू कर देता है। हमने मन से किया बाबा गुड मॉर्निंग, और बाबा ने वरदानों के डायमंड रूपी रतन हमको देने प्रारंभ कर दिए। लेकिन यदि उस समय थोड़ा सा भी हमने आलस्य या अलबेलापन दिखाया, तो फिर माया हमें बड़ी प्यार की नींद में अपनी गोद में सुला लेती है। हम सोचते भी हैं कि ये क्या हुआ, अभी तक तो हम बड़े अच्छे जग गए थे, लेकिन कब सो गए हमें पता ही नहीं पड़ा। माया ने क्या किया, हमें बाबा के डायमंड रूपी वरदानों से को लेने से वंचित कर दिया। इसलिए अमृत बेला हमारा बहुत ही सुंदर, सुखद और वरदानों से भरपूर हो, इस बात का हमें विशेष अटेंशन रखने की जरूरत है। और अमृत वेले को भी हमें शक्तिशाली बनाना है, तो शक्तिशाली बनाने के लिए हमें अपनी सारे दिन की दिनचर्या के ऊपर विशेष अटेंशन रखना होगा, क्योंकि सारे दिन की दिनचर्या का आधार ही अमृत बेला है। हम क्लास में आए, मुरली सुनी, योग किया, वार्तालाप किया, घर में गए, भोजन खाया, किस स्थिति में रहे, पारिवारिक सदस्यों के साथ हमारा कैसा व्यवहार रहा, हम ऑफिस में गए, बिजनेस में गए, परिवार में रहे, उन पारिवारिक संबंधियों के साथ हमने कैसा बर्ताव किया, बिजनेस में हमने अपने मिलने जुलने वालों के साथ कैसा बर्ताव किया, ऑफिस में अपने साथियों के साथ हमारा कैसा व्यवहार रहा, वापस आने के पश्चात हमारी दिनचर्या कैसी रही, स्थिति कैसी रही। कई बार आपने देखा होगा कि आप जब ऑफिस से लौटते हैं या दुकान से लौटते हैं तो घर में आते ही बड़ा भारीपन सा महसूस करते हैं, कुछ चिड़चिड़ापन सा लेकर के आते हैं, और आते ही आते परिवार के सदस्यों के ऊपर कुछ फूलों की वर्षा अर्थात अपशब्दों की वर्षा होने लग जाती है, कहीं कहीं तनाव शुरू हो जाता है, रात्रि को सोने तक टेंशन बना रहता है, और उसी टेंशन के बीच हम सो जाते हैं, कब नींद आ गई। अपने आप को हमने बाबा के सामने हल्का नहीं किया, या अपने किए हुए कर्म का प्रायश्चित नहीं किया, हमसे जो भूल हुई उसकी हमने क्षमा नहीं मांगी, चाहे वो मुख से और चाहे वो संकल्प से, सामने वाले से यदि हम क्षमा मांग लेते हैं, और या सामने वाले से कोई भूल होती है उसे हम क्षमा कर देते हैं, तो अपने आप में हम हल्कापन महसूस करने लग जाते हैं। और यदि हमने ऐसे ही संकल्प विकल्पों के आधार से, उन्हीं संकल्प विकल्पों के चक्र में ही सो गए, तो अमृत बेला भी उठते हैं, आँख खुलती है, लेकिन थकान, भारीपन, सुस्ती, अनेक प्रकार की परेशानियां महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब सुबह आँख खुलती है तो बहुत फ्रेश उठते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि लगता है थकान हो रही है। किसी किसी दिन तो ऐसा महसूस होता है, आज सिर में दर्द हो रहा है या आज कमर में दर्द हो रहा है, लेकिन आधे पौने घंटे आप सो लिए, अमृत बेले का समय पूरा हुआ, और अमृत बेले के समय पूरा होते ही पुनः जब आपकी आंख खुली तो आप एकदम फटाफट उठ जाते हैं, फिर वो दर्द, वो परेशानी, वो कहाँ चली गई? कभी विचार किया? वो समय क्या था कि हमारा जो बाबा से अपॉइंटमेंट का समय था, वरदान लेने का समय था, उस समय माया ने हमको दर्द के रूप में या अन्य कोई परेशानी के रूप में, थकावट के रूप में आकर के वरदानी समय का समाप्त होते ही एकदम हम फिर फ्रेश हो गए, जिसको बाबा ने कई बार कहा है, बच्चे ये जो सुबह सुबह की ये माया है, सुस्ती है या थकान है, ये जो आती है या कोई प्रकार का दर्द उठता है, ये भी कागज का शेर के रूप में माया आती है। और जब शेर सामने आ जाता है तो हम क्या करते हैं? घबरा जाते हैं, और घबरा करके फिर रजाई ओढ़ करके सो जाते हैं। और जैसे ही वो वरदानी समय पूरा होता है वो शेर भाग जाता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन ये हमें बिल्कुल कमजोर बनाने वाली चीज है, इसलिए इस माया को, कागज के शेर को देख करके डरो नहीं। क्या करो, जैसे जंगल में जब हम जाते हैं तो यदि हमारे पास कोई लाइट की चीज है, लाइट जला दें, चाहे टॉर्च जला दें या माचिस जला दें, तो जंगली जानवर आपके पास में नहीं आएंगे। और यदि आप आग जला करके ना बैठे तो जंगली जानवरों के आने का और हमला करने का भय हर पल आपको बना रहेगा। इसी प्रकार से माया भी सुबह सुबह ही खास अमृत बेले कागज का शेर बन करके आती है। उस समय अगर आपने दृढ़ता रूपी संकल्प लेकर के उठ करके बैठ गए तो जहां दृढ़ता रूपी संकल्प आया, मैं अपने अनुभव के साथ बता रही हूं, कई बार ऐसा होता है स्वास्थ्य की कमी के कारण कभी कुछ खास अमृत वेले ही क्यों आता है। मैं सोचती हूं कभी कभी अमृत वेले उठे तो उठा नहीं जा रहा है कि चला नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों। और जहां हमने दृढ़ संकल्प किया 5 मिनट के अंदर स्पीड भी तेज हो जाती है, नींद भी भाग जाती है, दर्द भी भाग जाता है, थकान भी दूर हो जाती है, सब कुछ दूर। इसका मतलब है कि हमारे दृढ़ता के संकल्प रूपी अग्नि को माया ने देख लिया और वो दूर से ही हमसे विदाई लेना शुरू कर दिया। और हमने अगर थोड़ा भी ढीला संकल्प किया तो वो हम पर हावी होने के लिए तैयार हो जाती है। इसीलिए अमृत वेले योग की अग्नि को प्रज्वलित करके बैठे तो माया रूपी शेर हमारे पास नहीं आएगा। दूसरी बात, कई बार आपने देखा हो, दुनिया में भी होता है, इविल सोल्स के अटैक जब होते हैं किसी के ऊपर तो लोग घरों में धूप जला करके रखते हैं, हा? लोबान या हवन सामग्री, जिससे कि वो इविल स्प्रिट जो है वो उससे दूर चली जाती हैं। ये माया के भूत भी सुबह सुबह हमारे सिर के ऊपर मड़राते हैं आकर के। इस समय अगर योग की वास धूप, ज्ञान और योग की वास धूप जला करके रखेंगे तो ये माया के जो स्प्रिट हैं, बुराइयों के स्प्रिट जो है, विकार हैं, ये हमसे दूर भाग जाएंगे। इसके लिए कोई ना कोई तरीका हमें अपनाने की जरूरत है। अमृत वेले उठ करके बाबा से गुड मॉर्निंग करने के पश्चात कई बार बाबा ने कहा है कि बच्चे अगर कोई विघ्न आ रहा है, कोई समस्या आ रही है, कोई परेशानी आ रही है तो कोई बुक लेकर के आप बैठ जाइए, उसको पढ़िए, बाबा की मुरली को लेकर के बैठिए, उसको रिवाइज करिए और रिवाइज करने के बाद, पढ़ने के बाद उसको बंद करके रख दीजिए, फिर चिंतन कीजिए कि हमने इसमें से क्या क्या पढ़ा, तो आपके चिंतन की धारा भी बढ़ेगी, विचार सागर मंथन करने की स्पीड बढ़ेगी। और जैसे जैसे हमारा विचार सागर मंथन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो माया की जो भी ना सुस्ती, आलस्य, अलबेलापन के रूप में जो आ रही है वो हमसे दूर भागना शुरू कर देगी। इसके लिए रोज के अभ्यास की बहुत जरूरत है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि सारे दिन की दिनचर्या, इस पर हमें बहुत अटेंशन रखने की जरूरत है। अगर हमारा दिनचर्या अच्छी है तो अमृत वेला हमारा कभी मिस नहीं हो सकता है। और अगर सारे दिन की दिनचर्या में, बोलचाल में, व्यवहार में, कर्म में, भोजन में, किसी भी प्रकार की थोड़ी बहुत भी कमी है, हलचल है या अशुद्धता है विचारों की भी, तो अमृत वेला हमारा शक्तिशाली नहीं हो सकता है। अमृत वेले विशेष बाबा ने हम बच्चों को तीन स्मृतियों का तिलक लगाया है। तो जिस प्रकार से सवेरे सवेरे उठ करके फ्रेश होकर के माताएं बहनें खास क्या करती हैं, तिलक लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, है ना, बाबा भी रोज अमृत वेले हम बच्चों को तीन स्मृतियों का तिलक लगाता है। वो तीन स्मृतियां सबको अच्छी तरह से याद हैं और सुबह सुबह आप लगाते भी होंगे, मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, और जो कुछ बीता वो सब, वो उसको भी लगा दो बिंदी। अगर ये तीन स्मृतियों की बिंदी का तिलक रात्रि को हम लगा करके सोएं, तो अमृत वेले आंख खुलते ही हमारे मस्तक पर ये तीनों बिंदियां चमकती हुई नजर आएंगी। तो हम आत्मा बिंदी हैं, खाली मुख से ही नहीं बोलना है लेकिन उसका अनुभव भी जीवन में करना है कि सचमुच में मैं आत्मा बिंदी हूँ। रटा रटाया तो हमको सबको बहुत अच्छा है, हम ज्ञान भी जब सुनाते हैं तो हम दूसरों को भी बताते हैं कि आत्मा बिंदी है, बाबा बिंदी है, ड्रामा बिंदी है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में अपने ऊपर अप्लाई करने की बात आती है तो कहीं कहीं क्या होता है, फेल हो जाते हैं, होता है ना कि नहीं होता है, नहीं फेल होते हैं, नहीं फेल होते, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो है। और अगर कहीं हो जाते हैं तो इसके लिए अनुभव की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान सुनना और सुनाना ये सहज है लेकिन उसको जीवन में लेकर के चलना, कई जब हमसे पूछते हैं कि बहन जी आप कितना समय से ज्ञान में चल रहे हैं, तो ज्ञान के चलने की अवधि तो हमारी लंबी है। बचपन में 6 वर्ष के थे तब से इस ज्ञान में हम चल रहे हैं, है ना। जिस दिन से बाबा का परिचय मिला, बाबा की गोद ली, उस दिन से ये ज्ञान तो मिल गया कि हम आत्मा हैं। लेकिन ये ज्ञान हम में कब से चलना शुरू हुआ, बात है ये, ज्ञान हम में चलना शुरू हुआ माना किस दिन से इस ज्ञान की अनुभूति हमने करना शुरू की। जिस दिन से हमने ज्ञान को अपने जीवन में उतारना शुरू किया उस दिन से हम कहेंगे कि हम ज्ञान में चल रहे हैं। तो उतर रहा है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अगर मैं आत्मा हूँ ऐसे कहें तो देखिए, दुनिया में सभी लोग कहते हैं जीव है, प्राण है, आत्मा है, सभी कहते हैं ना। कोई ऐसा है जो न कहता हो कि हम आत्मा नहीं है या जीव नहीं है या प्राण नहीं है, सब कहते हैं, लेकिन इतना कहने के बावजूद भी उसका अनुभव नहीं करते हैं। जो अनुभव हम बाबा के बच्चों ने बाबा के बनने के बाद पाया है, वो अनुभव पहले था, ज्ञान था लेकिन अनुभव नहीं था। अनुभव उस दिन से हुआ जब हमने उस चीज को समझा और उसको जीवन में रियलाइज किया, महसूस किया। तो मैं आत्मा बिंदु हूँ, दूसरा बाबा हमारा बिंदु है, बाबा बिंदु है, और बिंदु की हम पूजा भी 63 जन्मों से शिवलिंग की पूजा करते चले आ रहे थे, लेकिन बाबा को बिंदु है ये समझ करके याद कभी भी नहीं किया था। याद हम उसी बड़े रूप को ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में, राधे कृष्ण के रूप में, भिन्न भिन्न रूपों से याद करते थे, लेकिन बाबा बिंदु है उस स्वरूप से याद नहीं करते थे। लेकिन अब जब हम याद करते हैं तो जैसे ही हमने ये अनुभव किया कि मैं आत्मा बिंदु हूं, वैसे ही हमको कौन याद आया? हमारा बाबा, शिव बाबा बिंदु याद आया। मैं आत्मा बिंदु हूं तो जैसे बीज के अंदर सारे वृक्ष का सार समाया हुआ होता है और उसमें भी सबसे छोटा जो बीज है वो बटका, जो बरगद का पेड़ जिसको कहते हैं, बरगद के पेड़ का जो बीज है या पीपल के बीज वृक्ष का जो बीज है वो बहुत ही छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, लेकिन उसका वृक्ष का विस्तार कितना बड़ा होता है। ऐसे ही मैं आत्मा बिंदु हूं, मुझे आत्मा में पूरे 84 जन्मों का विस्तार समाया हुआ है। जैसे जैसे इमर्ज होता जाता है, रील खुलती जाती है, हम अनुभव करते जाते हैं। अभी कह रहे थे पता नहीं, इस बात का हमको पता नहीं, और थोड़ी देर के बाद में हमें उसका पता, सामने उसकी रील खुली और हमें दिखाई पड़ने लगता है। फिर हम सोचते भी हैं अंदर से, अंदर वंडर भी लगता है, लेकिन फिर उसके बाद जब कर्म कर लिया तो फिर पश्चाताप रह जाता है। संसार के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये चाहता हो कि हम कोई गलत काम करें, है कोई ऐसा? हर एक यही चाहता है कि हम अच्छे से अच्छा करें, लेकिन जब गलतियां हो जाती हैं तो पश्चाताप करता है कि ऐसा ना करते तो अच्छा था। लेकिन बाद में पश्चाताप करने से फायदा होता है क्या? नहीं होता। फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है? कहते हैं भाई भुला दो, बिंदी लगा दो। अभी आप सभी ने होली का त्योहार मनाया और बाबा ने होली का अर्थ कितना सुंदर बताया है, वो तीसरी बिंदी, क्या? होली सो होली, अर्थात बीती सो बिंदी। अब ये कहना कितना सहज है, बीती सो बिंदी, लेकिन बिंदी लगी, चेक क्या करने की जरूरत है? हमारे से वो बिंदी लगी बीती हुई बात पर। अगर हमने कह तो दिया, हमको किसी ने समझा भी दिया, कोई बात नहीं, हो गया ना, छोड़ो, अच्छा इसको बिंदी लगा दो, हमने समझ भी लिया कि हाँ बीत गया, बिंदी लगा दो। बिंदी लगाने का मतलब क्या है? उसके बाद मेरे मन के अंदर भी वो संकल्प न रहे। ऐसी बिंदी लगनी चाहिए कि दोबारा वो बात रिपीट ना हो। हमारी जगत अम्बा मातेश्वरी नंबर वन में क्यों गई, कैसे गई? मम्मा का एक विशेष पुरुषार्थ जो था वो यही था कि मम्मा से यदि कभी कोई बात हो भी गई, पहली बात तो हुई नहीं, और अगर हो भी गई कोई बात, तो मम्मा ने जीवन में कभी भी दोबारा उस गलती को रिपीट नहीं होने दिया। ऐसी बिंदी लगाई। तो हम सभी भी अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाना चाहते हैं तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? इन तीन बिंदियों के स्मृति का तिलक हर वक्त लगा हुआ रखना पड़ेगा, लगा के रहना होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब कोई बात हो रही होती है या कोई हमको उस समय हम कोई उलझन में हो या गुस्से में हो तो हमको जब कोई समझानी दे रहा होता है तो कई बार मुख से क्या निकल जाता है, अनुभवी होंगे आप सभी भी, कई बार क्या निकलता है, ठीक है ना, हाँ हमने समझा है ज्ञान को। लेकिन उस समय जो हम ये कहते हैं ना, हाँ हमने समझा है, हमने समझा नहीं है, केवल हमने रटा हुआ है। अगर समझा हुआ होता तो उस समय हम डिस्टर्ब नहीं होते। तो इसलिए सुबह सुबह अमृत बेले खास इन तीन स्मृतियों के बिंदी का तिलक रोज लगा लें और सारे दिन में बीच बीच में चेक करते रहें कि वो तीनों बिंदियां स्थायी रूप से कायम हैं। कोई भी स्मृति का तिलक विस्मृत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जहां विस्मृति होती है वहां ही माया आती है। बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे यदि बाप की याद नहीं है तो पाप होगा, यदि बाप की याद है तो पाप होगा, होगा नहीं हो सकता है। हाँ? तो हम बार बार चेक करते रहें, मैं आत्मा बिंदी हूँ, मेरा बाबा बिंदी है, और कोई भी बात आती है तो मैं उसको बिंदी लगाती जा रही हूँ। अगर बार बार हम उसको बिंदी लगाते जाएंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। और बिंदी का एक फायदा और भी है, जैसे एक के आगे, वैसे बिंदी रखो तो कोई उसका महत्व नहीं, लेकिन एक के आगे अगर बिंदी लगा देंगे तो 10, दो लग जाएंगे तो 100, तीन लग जाएंगे तो बिंदिया और लगाते जाओ तो 1000, 10000, लाख, करोड़ पदम बनते चले जाएंगे। इसी प्रकार से बीती हुई बातों को अगर हम बिंदी लगाते जाएंगे तो हमारे पुरुषार्थ में क्या होगा, तीव्रता आती जाएगी और हमारे खजाने बढ़ते चले जाएंगे, सहज हो जाएगा ना पुरुषार्थ। लेकिन उसके लिए हमें अमृत बेले ये तीनों बिंदियां लगानी होंगी, ये ध्यान रखना। तीसरी बात, बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल्स की ड्रेसें दी हैं। मिली है ना भिन्न भिन्न ड्रेस। वैसे तो हम सब ब्राह्मण बच्चों की एक ही कलर की ड्रेस है, व्हाइट। लेकिन आत्मा को श्रृंगार करने के लिए कितनी भिन्न भिन्न टाइटल्स बाबा ने हमको दिए हैं। अगर रोज सवेरे सवेरे, जैसे एक कहानी आप सभी ने बहुत सुनी हुई होगी कि एक राजा को 7 बेटियां थी, तो राजा ने अपनी बेटियों से पूछा तुम किसके भाग्य का खाती हो, तो बिचारियों ने 6 ने तो ये कहा कि मैं अपने आप के भाग्य का खाती हूँ, राजा के भाग्य का खाती हूँ, लेकिन एक ने कहा कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। जिसने ये कहा कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ तो राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि सवेरे सवेरे जो भी मिले ना उसके साथ इसकी भावना डाल करके इसको निकाल दो घर से। तो एक लकड़ी बेचने वाला आया सवेरे ही दरवाजे पर और उसके साथ उसके शादी करके उसको भेज दिया। लेकिन वो जो रानी बन करके, माना लड़की जो शादी होकर के गई, वो बहुत ही बुद्धि की तीक्ष्ण थी। उस लकड़हारे पति को उसने लकड़ियों के काटने का ज्ञान, चंदन की लकड़ियों का ज्ञान, वो बहुत सारा ज्ञान करा दिया। वो रोज चंदन की लकड़ी काट करके लाने लगा और धीरे धीरे वो माला माल हो गए और ऐसे माला माल हो गए कि उन्होंने अपना महल भी बना लिया और बहुत कुछ व्यवस्थाएं कर ली और एक राजमहल की तरह से रहने लग गई। तब उसने सोचा कि अब मैं अपने पिताजी को बुला करके और इनको अपने यहाँ भोजन कराऊं। उसने उनको आमंत्रण दिया और आमंत्रण स्वीकार किया। राजा ने उसके घर आए और जब राजा घर आया तो उसी कन्या ने, उस बहन ने हाँ, क्या किया कि भिन्न भिन्न प्रकार के, जब भोजन लेकर के आती थी तभी एक नई ड्रेस पहन करके आती थी, जब भोजन लेकर के आती थी तो नई ड्रेस पहन करके आती थी। राजा बड़ा आश्चर्य में कि भाई ये तो बहुत ही रिच है और ये कहाँ से इसको भाग्य मिला। तब फिर उसने पिताजी के सामने अपने भाग्य का वर्णन किया, पिताजी मैं वही हूँ जिनको आपने एक लकड़हारे के साथ भेज दिया था और मैंने आपको कहा था कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, आज मैं अपने भाग्य का ही खा रही हूँ जिसमें आपको मैंने आमंत्रित किया है। कहने का भाव कि हम सब भाग्यवान आत्माएं हैं, भगवान ने हम सबको अपना अपना भाग्य, श्रेष्ठ भाग्य दिया हुआ है और भिन्न भिन्न प्रकार की भाग्य की ड्रेसें हम सबको मिली हुई हैं, मिली है ना। तो सवेरे सवेरे कितनी प्रकार की हम ड्रेसें पहनते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, है मैं होनहार फरिश्ता आत्मा सो देवता आत्मा हूँ, ये ड्रेसें मिली है ना। कितने प्रकार के टाइटल्स की ड्रेस बाबा ने हम सब बच्चों को दी हैं। तो रोज सवेरे सवेरे अमृत बेले हम बिंदियों का तिलक लगा लें, टाइटल्स की ड्रेस धारण कर लें और फिर सारा दिन भी उन टाइटल्स की ड्रेस को स्मृति में रखें, बार बार चेंज करने की अगर जरूरत है तो चेंज भी करते रहें, तो क्या होगा, हमारा अमृत बेला हमारे सारे दिन की दिनचर्या को ठीक कर देगा। क्योंकि जैसे बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है कि बच्चे अपने आदि और अनादि काल को स्मृति में लाओ, हमारा आदि और अनादि काल कितना सुंदर है, सुखद है, आदि अनादि स्वरूप में मैं आत्मा, सातों गुणों से संपन्न सतोगुणी आत्मा थी, सतो प्रधान आत्मा थी और आदि काल में भी मैं देव स्वरूप में सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारा अनादि काल भी कितना सुखद और सुंदर था और आदि काल भी कितना सुंदर था। ये तो बाद में मध्य और अभी अंत में आकर के हमारी फटी पुरानी ड्रेसें हो गई हैं और जैसे ही हमारी फटी पुरानी ड्रेस हुई अंत में आते ही वैसे ही हमें कौन मिल गया, स्वयं भाग्य विधाता भगवान हमारा अपना बन गया। कितना श्रेष्ठ नशा है, कितनी श्रेष्ठ खुशी है, जो खुशी जो नशा हमें प्राप्त हुआ है वो खुशी केवल अपने तक ही नहीं रखनी है, वो खुशी हमें अन्य तक भी बांटनी है। कहते भी हैं दान दिए धन ना खुटे, बाबा ने हमें जो इतना खुशी का खजाना दिया है जितना हम इस खुशी के खजाने को बांटेंगे उतना हमारे पास बढ़ता जाएगा। लेकिन वो खुशी भी स्थायी तभी रह सकती है जब हम अपनी उस स्मृति में रहेंगे, उस टाइटल्स के स्वरूप में स्थित रहेंगे, तभी वो नशा चढ़ेगा और जब नशा चढ़ेगा तो खुशी होगी। तो नशा चढ़ाने के लिए बाबा ने हमें कौन सी स्मृति दिलाई है, बच्चे अपनी घोट तो नशा चढ़े। हम क्या करते हैं बीच बीच में, अपनी घोटने के साथ साथ दूसरों की घोटने में लग जाते हैं, जब दूसरों की घोटेंगे तो नशा हमें चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा है? इसलिए अपनी घोटने की जरूरत है। क्या घोटना है, वो तो भांग के घोट करके पीते और पिलाते हैं, और यहाँ बाबा ने रोज अमृत बेले घोटने के लिए क्या दिया है, कितना सुंदर ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का खजाना दिया है। घोटो, जितना इसको हम घोटते हैं अर्थात जितना इसका मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, उतना हम पर नशा चढ़ता है, और जितना नशा चढ़ता है उतना खुशी होती, झूमते हैं, और जितना हम स्वयं झूमते हैं तो हमें देख करके लोग क्या कहते हैं, क्या मिला है आपको, कौन मिला है, अनुभवी है ना, पहले की जीवन में और अभी की जीवन में कितना फर्क महसूस करते हैं, होता है कि नहीं होता है, आप भी महसूस करते हैं और आपको देखने वाले आपके परिवारी जन भी महसूस करते हैं कि इनको क्या मिल गया है, ये इतना खुश रहते हैं। कई कई ऐसे ऐसे भाई बहने हैं, कैसी समस्याएं आ रही हैं, परेशानियां हैं, लेकिन बड़े मस्त हैं, खुश हैं। लोग कहते हैं देखो सब कुछ तो इनका लूट गया फिर भी इतने खुश रहते हैं। हमारे यहाँ एक भाई परिवार था, तो जिस दिन से वो ज्ञान में चले उनके सामने विचारों के आगे परीक्षाओं पे परीक्षाएं, एक के बाद परीक्षा, एक परीक्षा आई फिर दूसरी आई फिर तीसरी आई, पहले दुकान छूट गई फिर मकान भी छूट गया फिर शहर भी छोड़ना पड़ा उनको, कुछ परिस्थितियों के कारण, परिस्थितियां, लोगों ने उनको कहना शुरू कर दिया, परिवार वालों ने कहना शुरू कर दिया, जब से तुम इस ज्ञान में चले हो ना तब से तुम्हारे ऊपर समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं, जब से तुमने जो है शिव बाबा ओम शांति करना शुरू किया तब से तुम्हारे ऊपर परीक्षाएं हैं, तुम ये छोड़ दो, तुमने फलाने अपने देवता की पूजा नहीं करते हो, अपने इष्ट की पूजा नहीं करते हो, तुमने ये किया है इसलिए तुम्हारे पास परेशानियां आ रही हैं, आप इन सबको छोड़ दोगे फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो परिवार भी बाबा का इतना निश्चय बुद्धि परिवार, पति पत्नी दोनों ही थे और बच्चे भी संपर्क में रहते हैं तो स्नेही सहयोगी तो बन ही जाते हैं, तो आप समझिए कि उनका सब कुछ छूटा लेकिन बाबा नहीं छूटा। वो एक ही बात कहते थे, कुछ भी हो जाए हमने भगवान को अपना बनाया है, भगवान हमारा साथ कभी न कभी तो देगा, ये तो हमारे पूर्व कर्मों का कोई हिसाब किताब है जिसके कारण से हमारे सामने परीक्षाएं हैं, कोई बात नहीं आज नहीं कल पार हो जाएंगी। और वो हंसते, उनका चेहरा आप देखते दोनों का तो कितने खुश रहते थे। धीरे 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 करते पहले तो परीक्षाओं का दौर आया और उसके बाद उनकी उन्नति का दौर शुरू हुआ। धीरे धीरे तीनों बेटों के बिजनेस बहुत अच्छे हो गए, बेटी सेंटर पर अभी रह रही है, अब तो वो पति पत्नी तो शरीर छोड़ गए लेकिन कहने का भाव है कि उनके पूरे परिवार में आज भी खुशहाली है। बच्चे ज्ञान में नहीं चले भले ही, लेकिन आज भी बाबा के प्रति स्नेह है, सहयोगी हैं, लेकिन उनके जीवन के दिन बदल गए। कहते हैं ना घूरे के भी कभी कभी दिन बदलते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, परीक्षाएं जो आती हैं वो आती ही किस लिए हैं, आगे बढ़ाने के लिए, न कि पीछे हटाने के लिए। लेकिन हम कई बार परीक्षाएं जब आती हैं तो उनको देख करके घबरा जाते हैं, और ऐसे घबरा जाते हैं कि हम बाबा को भी भूल जाते हैं, ज्ञान को भी भूल जाते हैं, अमृत बेला भी मिस करना शुरू कर देते हैं, मुरली भी मिस करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे माया हमको अपने परिवार से दूर करने लगती है। जैसे कोई भी दुश्मन अगर एक दूसरे देश के ऊपर जब हावी होना चाहता है या उसके ऊपर हमला करना चाहता है तो उसके पहले, हमला करने से पहले उसके बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, खाने पीने के सुविधाओं के कनेक्शन, आने जाने के साधन, इन सबको खत्म करता है, उसके बाद जब उस देश के ऊपर हमला करता है तो विजय सहज हो जाती है उसकी। माया भी ऐसे ही करती है, माया भी धीरे धीरे हम पर ऐसे हावी होती है तो पहले तो अमृत बेला मिस कराती है, फिर धीरे धीरे मुरली मिस कराना शुरू कराती है, फिर धीरे धीरे परिवार से भी थोड़ा दूर दूर रहना शुरू कर देते हैं, अलौकिक परिवार से है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस संगठन से दूर होने लग जाते हैं, फिर कोई पूछता भी है तो बड़े प्यार से बड़े ढंग की युक्ति देते हैं, बहन जी ये समस्या, बहन जी ये समस्या, कि फलाना आ गया, कि ये हो गया, कि वो हो गया, कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढ करके रखते हैं, जिसको बाबा कहते हैं ना कि मेरे बच्चों को और बाजियां तो आती होंगी, वो आती होंगी, लेकिन एक बाजी बहुत अच्छी आती है, वो कौन सी? बहानेबाजी। कि वो बहानेबाजी ऐसी सीख जाते हैं कि माया धीरे 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 हमारा भोजन पानी लाइट सब कुछ खत्म, कनेक्शन कट कर देती है, और उसके बाद हम पर वार करती है, और उसके बाद जब वार करती है तो हम धराशाही हो जाते हैं। इसलिए माया के वार से बचना है तो सबसे पहले अपना अमृत बेला शक्तिशाली बनाना है, अपने ब्राह्मण परिवार के संग से कभी भी दूर होने का संकल्प नहीं आने देना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, योग युक्त भोजन खाना है और दूसरों को भी खिलाना है। अगर हम 5-6 बातों का ध्यान अपने ऊपर रखेंगे, अमृत बेले का, मुरली का, संग का, भोजन का, है ना, तो क्या होगा, सारे दिन की दिनचर्या पर अटेंशन रहेगा, हमारा चार्ट रात्रि को बैठ करके जब देखेंगे तो अच्छा रहेगा। जब चार्ट हमारा अच्छा होगा तो स्वतः ही माया धीरे धीरे वो हमसे दूर होना शुरू कर देगी, फिर माया के वार का करेगी भी तो असर नहीं होगा। कभी भी ये मत समझे कि माया हमको हराने के लिए आई है, माया बाबा कहता बच्चे विदाई लेने के लिए आती है। अब मेरे बच्चों को हराने के लिए माया नहीं आ सकती, माया विदाई लेने के लिए आ रही है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम थोड़ी सी गलती जो करते हैं वो ना करें आज के बाद। वो गलती क्या करते हैं, माया आती विदाई लेने और हम खिसक करके उसको जगह दे देते हैं। जैसे हॉल में भी बहुत सारी जगह है तो कितने भी अभी आए आकर के बैठ सकते हैं, लेकिन अगर फुल है और दरवाजा बंद है तो क्या कोई अंदर घुस सकता है? नहीं घुस सकता है ना। तो माया भी आती है विदाई लेने और हम क्या करते हैं कि आ जाओ। और कई बार ऐसी माया आती है बड़े प्यार से, हम आपस में दो लोग मिलते हैं, ज्ञान की चर्चा शुरू करेंगे, भाई साहब बहन जी आज क्लास में गए थे? हाँ गए थे, मुरली सुनी थी? अच्छा बाबा ने क्या बताया था? अच्छा फिर कौन कौन आया था? अच्छा देखो वो फलाना है ना, वो ऐसा है। शुरू किया था कहाँ से हमने? सेंटर से, परिवार से, ज्ञान से, लेकिन फिर पहुंच कहाँ जाते हैं? उसकी कमी और कमजोरियों में। माना हमने क्या किया, माया का आवाहन किया, आवाहन किया माया आ गई, आ गई फिर हम उसकी खातिरी करना शुरू कर देते हैं, और जब उसकी खातिरी करने लगते हैं तो वो बैठ जाती है, फिर कहते ये क्या हुआ, हम शुरू कहाँ से हुए थे और पहुंच कहाँ गए, हमारा समय बर्बाद हो गया। बाद में हम सोचते हैं, इसलिए हम पहले से ही सोचें कि हम समय को आवाज करने वाले बाबा के बच्चे हैं, ना कि बर्बाद करने वाले। बर्बाद करते करते तो हमारी बर्बादी हो गई कि हम कहाँ थे और कहाँ पट में आकर के पड़ गए, ऐसी बर्बादी हो गई, मिट्टी में मिल गए। बाबा ने हम मिट्टी में पड़े हुए हीरों को छांट करके निकाल करके अपने संगम युगी पॉट में रखा, ज्ञान और योग की साबुन लगा करके जल डाल करके धुलाई कर रहा है, और हमें सुंदर संगम युगी पॉट में रख करके सतयुग के लिए तैयार कर रहा है, और हम क्या करते हैं उस पॉट में से निकल निकल करके कूद कूद करके फिर धूल में पहुंच जाते हैं। कहते हैं हम चाहते तो नहीं हैं लेकिन हो जाता है, यही कहते हैं ना, हम देह अभिमान में आना नहीं चाहते हैं, लेकिन कई बार ज्ञान का भी उल्टा नशा चढ़ जाता है, योग का भी उल्टा नशा चढ़ जाता है, कई बार अमृत बेले का भी उल्टा नशा चढ़ जाता है। मेरे जैसा अमृत बेला किसी का नहीं है। आया नशा है? बड़े प्यार से आता है। मेरा अमृत बेला, मैं 2 बजे उठ जाता हूँ, मैं 2 बजे उठ जाती हूँ। मालूम पड़ा 2 महीने 4 महीने 6 महीने 2 बजे उठ रही थी, लेकिन किसी दिन ऐसा हुआ कि 6 बजे उठी है। अभिमान किसी चीज का नहीं आना चाहिए है। जहां अभिमान है वहां अपमान की महसूसता अवश्य होगी। अगर हमें किसी के बात का अपमान महसूस हो रहा है तो समझ लो कहीं न कहीं मोटा स्वरूप अहंकार का तो नहीं है, लेकिन भान, अभिमान या भान का रूप है। फील क्यों हुआ? फीलिंग आई, फेल हो गए। फीलिंग फ्लू की बीमारी है, वो हमको तो लगती ही है, लेकिन हमारे साथ साथ अड़ोसी पड़ोसियों को भी लग जाती है, परिवार वालों को भी लग जाती है। इसलिए जब किसी को सर्दी जुखाम शुरू होता है तो क्या कहते हैं, भाई रुमाल लगा लो, खांसी आ रही है, छींक आ रही है, तो रुमाल लगा लो, मुंह घुमा लो, नहीं तो उसका असर दूसरे पर भी हो जाएगा। तो इसी तरह से किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे वो ज्ञान का अभिमान हो, चाहे वो योग का अभिमान हो, चाहे वो सेवा का अभिमान हो, सूक्ष्म में भी किसी भी प्रकार का अभिमान ना आने पाए, इस बात का हमें बहुत बहुत अटेंशन रखना है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था अमृत बेले का, कि हम हमारी सारी दिनचर्या का जो आधार है वो है ही अमृत बेला। हमारा अमृत बेला यदि शक्तिशाली है तो हमारा सारा दिन स्वतः ही शक्तिशाली बन जाएगा। और जब शक्तिशाली दिनचर्या हमारी होगी तो हर कार्य में हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए सफलता का आधार अमृत बेला है। अमृत बेले को शक्तिशाली बनाएं और सफलता प्राप्त करें। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का, जिन्होंने हमें ज्ञान रत्नों से सजाया। किसी ने कहा है, नदी में गिरने से जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कोई समस्या नहीं, समस्या तभी बनती है जब निबटना नहीं आता। तो आदरणीय दीदी जी ने हमें निबटना सिखाया, निवारण करना सिखाया, बहाना बनाना नहीं है। बहाना एक कोई समस्या नहीं है, बहाने को हमें खत्म करके निवारण करना है। तो सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पुनः हम दादी दीदी जी का धन्यवाद देंगे। ओम शांति।